ओम शांति। एक दिन मैंने मन में शब्द को धसाया था और एक गहरी पीड़ा, एक गहरे आनंद में सन्निपात ग्रस्त सा विवश कुछ बोला था। सुना मैंने, मेरा वह बोलना दुनिया में काव्य कहलाया था। आज शब्द में मौन को धसाता हूं। अब न पीड़ा है न आनंद ही है, विस्मरण के सिंधु में डूबता सा जाता हूं। देखू तह तक पहुंचने तक यदि पहुंचता भी हूं क्या पाता। ये कविता है हरिवंश राय बच्चन की। इसमें कवि कह रहा है, एक दिन मैंने मौन में शब्द को धसाया था, एक दिन मौन में मैंने शब्द को धसाया जबरदस्ती, फिर क्या हुआ, और एक गहरी पीड़ा, एक गहरे आनंद में सन्निपात, सन्निपात अर्थात बेसुध, बेहोश, डिलीरियस, सन्निपात ग्रस्त सा विवश कुछ बोला, मौन में शब्द को धसाया और फिर विवश होकर मैंने कुछ बोला। सुना मेरा वह बोलना दुनिया में काव्य कहलाया था। मेरा वो जो बोलना था दुनिया में कविता काव्य बन गया। आज पर आज क्या कर रहा हूं, शब्द में मौन को धसाता हूं। पहले मौन ने शब्द को धसाया, अभी शब्द में मौन को घुसा रहा हूं। तो क्या हो रहा हूं, अब ना पीड़ा है ना आनंद है, विस्मरण के सिंधु में डूबता सा जाता हूं। देखूं तह तक पहुंचने तक यदि पहुंचता भी हूं क्या पाता हूं। दो अवस्थाएं बताई है, एक तो मौन में शब्दों को डुबाया और दूसरा शब्दों में मौन को डुबाया। पहली अवस्था में कवि बन गया और दूसरी अवस्था में खो गया। मौन सागर है और इस मौन में जब भी कोई शब्द जाएंगे और वहां से जब निकलेंगे तो संगीत बन जाएंगे, कविता बन जाएगी, काव्य बन जाएंगे। परंतु यदि शब्द जो है उसमें जबरदस्ती मौन डालने की कोशिश करेंगे फिर पता नहीं क्या होगा। कवि कह रहा है मैं खो गया हूं, विस्मरण हो गया है मुझे। तो आज हम जब अमृत वेला कर रहे थे और जो उस दिन रविवार को भी कहा कि बाबा कौन है, मौन का सागर, तो हम सोच रहे थे कि बाबा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जिसका वो सागर है, शिव जैसे एक अनोखा सागर है। तो सबसे पहला तो वो मौन का सागर है, परम मौन का, जहां पर कोई आवाज नहीं। और वो उस मौन से जब संसार में आता है और फिर कुछ बोलता है तो उस बोल में कुछ अजीब सा प्रभाव होता है। और वो आता भी है शब्दों में, किस लिए, मौन में ले जाने के लिए। आवाज से परे बाप आवाज की दुनिया में आवाज से परे ले जाने आया है। तो सबसे पहले उसकी जो महिमा है वो मौन की है, वो परम मौन है, द ग्रेट साइलेंस। और यदि उसको जानना है, यदि उसको समझना है तो आत्मा को भी उसी मौन में प्रवेश करना पड़ेगा। बिना उस मौन में प्रवेश किए उस परम मौन को जाना ही नहीं जा सकता, केवल उसके शब्दों द्वारा, क्योंकि उस परम मौन ने नीचे आकर कुछ शब्द कहे, पर केवल शब्दों से खेलते खेलते, शब्दों को जानते हुए उसको नहीं जाना जा सकता। केवल चिंतन करते करते उसके कही हुई बातों का उसको नहीं जाना जा सकता, उसको जानने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, और वो और है मौन। अंतर बाहर दोनों के शब्द शांत हो जाए तो ही उसको जाना जा सकता है। अंतर के शब्द, अंदर के शब्द, बाहर के शब्द, ये दोनों शब्द जब शांत होंगे और एक साइलेंस की अवस्था क्रिएट होगी, उस साइलेंस में इस साइलेंस को जाना जा सकता है। केवल शब्द, केवल वाचा, केवल वाचाल होना, केवल पढ़ते रहना, इससे उसको नहीं जाना जा सकता है। सत्य इतना आसान नहीं है कि किसी ग्रंथ का अध्ययन करने से उसे जान लिया जाए, या केवल मुरली से ही उसको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो उससे भी परे है, वो उसके उसकी अभिव्यक्ति है, वो कह रहा है, परंतु वो स्वयं सबसे परे है। ऐसी शायद ही कोई दो मुरलियां होगी जो समान होगी कि है, कोई भी नहीं। टॉपिक समान हो सकते हैं, परंतु अंदर जो कहा है या जिस ढंग से कहा गया है वो अलग अलग है, क्योंकि वो सागर है। तो सबसे पहले उसकी जो महिमा है वो है, वो मौन का सागर है, सी ऑफ साइलेंस, शिव सागर की अनोखी महिमा है ये। दूसरा, वो गहराई का सागर है। एक तो है कि सागर में गहराई होती है, दूसरा गहराई का सागर। आज सुबह की साकार मुरली में बाबा ने कहा है, मैं तुम्हें गहरी गहरी बातें बताता हूं। इसके लिए सुनना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि फुर्सत नहीं है। तुम्हारे तुनीर में, तर्कस में क्या होना चाहिए? ज्ञान बाण होने चाहिए, अच्छे अच्छे नए नए। तो भगवान स्वयं गहराई का सागर है। यदि गहराई को पाना है, गहराई को छूना है, तह तक जाना है, तो उस गहराई को समझना पड़ेगा। हर चीज की वो गहराई है, मनोविज्ञान की गहराई उसमें है, तप की गहराई, साधना की गहराई, पवित्रता की गहराई, ज्ञान की गहराई, योग की गहराई, हर चीज की गहराई का वो सागर है। उस सागर में उतरना पड़ेगा। और यदि कोई कहे कि मैं सागर में नहीं उतर सकता, डूबने का भय है, तो क्या कहेंगे? जब तक इस सागर में उतरते नहीं, तब तक तैरना भी नहीं सीख पाएंगे। कोई एक व्यक्ति है, वो आता है पहली बार तैरने सीखना, और जैसे ही वहां खड़ा होता है स्प्रिंग बोर्ड में, पैर फिसलता है और नीचे गिर जाता है, और फिर डूबने लगता है, और दूसरे लोग उसको आके बचाते हैं, और फिर वो संकल्प करता है कि जब तक तैरना न सीख जाऊं, अब इसके बाद मैं उतरूंगा ही नहीं पानी में, क्योंकि खतरा बहुत है। पहले मैं तैरना सीखूंगा, फिर पानी में जाऊंगा, पूरा सुरक्षित जब हो जाऊंगा। जब तक मैं तैरना नहीं सीखूंगा, अभी इसके बाद ये गलती फिर से नहीं करूंगा। जान लेने के देने पड़ गए थे, अभी तो पूरी जान जा रही थी। अगर कोई ऐसा सोच ले तो कभी तैर पाएगा, सीखेगा? कभी नहीं। यदि गहराई को जानना है, गहराई को जीवन में धारण करना है, गहराई में डूबना है, तैरना है इसमें, तो इसमें उतरना पड़ेगा। उस गहराई में भगवान गहराई का सागर है, शिव गहराई का सागर है, हर चीज की गहराई है, हर चीज की गहराई को जानना पड़ेगा। क्या है वो, जो वो शब्द कहता है, जो वो बोलता है, उसमें क्या गहराई है, उसके शब्दों की क्या गहराई है, उसकी बातों की क्या गहराई है, उसके भाव की क्या गहराई है, उसकी भावनाओं की क्या गहराई है, जो लक्ष्य वो हमें दे रहा है उस लक्ष्य की क्या गहराई है, जो आके वो एक एक शब्द बोल रहा है क्या है उसमें। ज्ञानेश्वर क्या करते हैं? आशीष भाई आज की मुरली में ज्ञानेश्वर क्या करते हैं? आकर ज्ञान चक्षु खोलते हैं। बिना ज्ञानेश्वर के और कोई ज्ञान चक्षु खोल नहीं सकता। कितनी गहराई है, एक छोटा सा वाक्य है मुरली का, ज्ञान चक्षु खुल जाए। और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो चीजें वैसी नहीं दिखाई देती जैसे अब है, कुछ और दिखाई देता है। आत्मा है फर्स्ट, आज कहा मुरली में बाबा ने, तुम शरीर को नहीं देखते, तुम आत्मा को देखते हो। और जो जो चीज विवश करती है आज शरीर को देखने के लिए वो बाधा है योग में। जो चीज उत्तेजित करती है हमको शरीर को देखने के लिए या शरीर को देखने का चिंतन करने का कारण बनती है, ट्रिगर बनता है, वो देहभान में लाने वाला है। कौन सा हाथी नहीं बनना है तुम्हें? मकना हाथी नहीं बन जाना है। मकना हाथी, मदमस्त हाथी, जिसको बहुत शराब पिलाई जाती है और मस्ती से जो चलता है, पागल हाथी, वाइल्ड एलिफेंट जो होता है वो मकना हाथी होता है। उसमें बड़ा देहभान होता है, देहभान बड़ा नुकसान करता है, कुचल देता है, किसी को नहीं देता है, वो उठा के पटक देता है, बिल्कुल पागल हाथी होता है वो मकना हाथी। तो देहभान मकना हाथी है, तो उसके शब्द शब्द में, वाक्य वाक्य में गहराई है। गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, ये चिंतन का विषय है। गुड़ क्या जानता है और गोथरी क्या जानता है, और उसके अतिरिक्त तो और कोई कुछ नहीं जानता। तो गहराई, शब्द शब्द की गहराई, वाक्य वाक्य की गहराई, उस गहराई में डूबना है, उस गहराई का सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि ये उसने क्यों कहा। तुम बाप की मदद से शक्ति लेते हो, तुम बाप से शक्ति लेते हो और सारे दुनिया को पावन बनाते हो, तो कल की मुरली में क्या वाक्य था? तो तुम बाप की मदद से दुनिया को पावन बनाते हो, तुम बाप से शक्ति लेते हो और दुनिया को पावन बनाते हो, तो सारी दुनिया को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, सारी दुनिया को तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। कल बोला था ना, तो उसके शब्द शब्द में पावर है, वो गहराई का सागर है। पहले मौन का सागर है, परम मौन का सागर है। शब्द वहां है नहीं, निर्वाक है वो, शब्द खो गए, शब्दों का अस्तित्व वहां नहीं, शब्द का सामर्थ्य नहीं वहां तक पहुंचने का, शब्द से पार है वो, भाषा से पार है वो, लैंग्वेज से पार है, व्याकरण से पार है। वो शब्दों की दुनिया में आते हुए भी शब्दों से परे है, अनगूगलेबल है वो। उसको नहीं जान पाते तुम। गूगल में एक शब्द होता है अनगूगलेबल, यदि गूगल में एक शब्द डालो उधर से कॉमा एरो वगैरह दे दो तो कुछ भी नहीं आएगा, नो रिजल्ट। इन शब्दों को कहा जाता है अनगूगलेबल वर्ड्स। वैसे भगवान को तुम्हारा गूगल जान नहीं पाता है, अनगूगलेबल है, अवर्णनीय है, अव्याख्य है, अनस्पीकेबल है, अकथनीय है, अनफैदमेबल, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, उस अतल है वो, अतल, जिसकी कोई था नहीं, जिसका कोई तल नहीं। ऐसा वो सागर है मौन का, ऐसा वो सागर है गहराई का, ये दूसरा। तीसरा, वो स्थिरता का सागर है। भगवान स्थिरता का सागर है, हमेशा स्थिर है, यहां की कोई भी बात, लहरें, तरंगे, रिपल्स उसमें उत्पन्न नहीं करती है, वो हलचल में आता है क्या? ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, कोई हलचल है ही नहीं उसमें, प्रशांत है निरंतर, परम शांत है, प्रशांत सागर की तरह, द पैसिफिक, द पैसिफिक है वो, जिसमें कोई हलचल नहीं, जिसमें स्थिरता है, जिसमें अडोलता है, अचलता है, अडिगता है, ऐसा वो स्थिरता का सागर है। और ये जो सात महिमा उसकी आज हम बता रहे हैं, ये सारी की सारी हमें अपने अंदर धारण करनी है। वही मौन हम में आ जाए, वही गहराई हम में आ जाए, वही स्थिरता हम में आ जाए, और वो आएगी कैसे, उस पर ध्यान लगाने से, उसका मनन करने से, उस पर चिंतन करने से। उस दिन बताए थे शिव बाबा के सात रूप, रोज करने हैं वो, बहुत मजा आएगा। सबसे पहला वो बिंदी है, दूसरा वो ज्योति है, तीसरा वो क्या है, बीज है, अगला स्टार है, अगला सागर है, और पहाड़ है। तो ऐसे ये सात रूप है, परम धाम का रोज योग इन सातों पर होना चाहिए। ऊपर पहुंचते ही पहले देखना वो बीज है, और मैं उस बीज से योग लगा रहा हूं, देखना वो बिंदी है तो मैं भी बिंदी हूं, वो ज्योति है, महाज्योति का ताप मुझ में आ रहा है, वो स्टार है, सुप्रीम स्टार, ट्विंकलिंग, शाइनिंग, चमक रहा है, उसकी चमक मुझ में आ रही है। फिर देखना वो सूर्य है, उस सूर्य की किरणें मुझ में आ रही है, पहाड़ है, इस पहाड़ को मैं खा जाऊंगा, जब तक इस पहाड़ को नहीं खा जाऊं रुकूंगी नहीं। तो ये परम धाम के योग है। तो तीसरा शिव बाबा क्या है, स्थिरता का सागर है। जैसा वो स्थिर है, मैं भी वैसा ही निष्कंप, अकंप, निस्तरंग, रिपललेस, एब्सोल्युटली काम, लिम्पिड, शांत, प्रशांत, स्थिर सागर हूं। ये तीसरा। चौथी महिमा वो धैर्य का सागर है। उसका धैर्य कैसा है, अथाह है, धैर्य की कोई सीमा ही नहीं है, इतना उसमें धैर्य है। धैर्य और हलचल अलग चीज है, धैर्य में पेशेंस बहुत है उसके पास, बहुत रुकता है वो। लाउत से एक चीन का दार्शनिक है, उसने लिखा है कि मनुष्य जल्दबाजी क्यों करता है, इस प्रकृति को देखो, प्रकृति को कोई जल्दबाजी है, नेचर नोज नो हरी, कोई नेचर को हरी नहीं है, और हम क्यों भाग रहे हैं, फिर क्यों हरी कर रहे हैं, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, जल्दी करो, जल्दी कर दो, जल्दी करो। नदियां कैसे आराम से बह रही है, हवाएं बह रही है, कोई किसी को जल्दबाजी नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। पौधा जो, उसको जल्दबाजी होता है कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं, ये मेरा बाजू वाला देखो कितना सीनियर हो गया, मैं कब हूं, मुझे भी इंचार्ज हेड। छोटे पौधे को कोई जल्दबाजी नहीं है, वो कितना धीरे 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 धीरे, मनुष्य को ही जल्दबाजी है। तो प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं है, और सारे कार्य आराम से हो रहे हैं, मनुष्य व्यर्थ ही जल्दबाजी कर रहा है, और जल्दबाजी से कभी कोई काम नहीं होते। हरी भरी करी तो स्थिरता अचलता का निशानी है, मूवमेंट से संबंधित है, और धैर्य समय से संबंध है, पेशेंस का संबंध टाइम से है, स्टेडीनेस का संबंध मूवमेंट से है। जो मूवमेंट नहीं है, जो चलायमान नहीं है, जो अचल है, जो चंचल घर नहीं, अचल घर है, अनशेकेबल, इमूवेबल, अनफ्लिंजिंग, वो जो है वो उसका संबंध मूवमेंट से है, मोशन से है, गति से है, और पेशेंस का संबंध समय से है, उसमें जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस है, धीरज धर मनवा, धीरे धीरे उसका धीरज परम है, विराट धीरज है उसका, और रुका हुआ है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं, कितना जबरदस्त धीरज है। आत्माएं आ रही है, आत्माएं ज्ञान छोड़कर जाती है फिर आती है, तब तक रुकता है वो, उसको कोई चिंता नहीं है कि ये छोड़ के जा रहा है, नहीं जाना चाहिए। तो वो चौथा धैर्य का सागर है, धीरज का सागर है, पेशेंस का सागर है। छठवा वो साक्षी का सागर है, पांचवा वो साक्षी का सागर है, सब कुछ साक्षी होकर देखता है वो, सब कुछ। उसे ये भी नहीं, ये मेरे बच्चे, ये वो मेरे नहीं, बोलता जरूर आके है कि अंचली देने में वो मेरी प्रवृत्ति सारा विश्व है, संडे बोला ना, उनको अंचली तुमको वर्षा, वो बोलता जरूर है, परंतु साक्षी है, संपूर्ण साक्षी, सब कुछ साक्षी होकर देखने वाला, कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होता है, किसी के भी कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल चाखा। कर्म की फिलॉसफी सिद्धांत बना रखे, अपने आप काम हो रहे, वो किसी को सजा विजा नहीं देता है। जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो मैं तो वही परम पिता, तुम्हारा परम धाम में तुम्हारा परम प्रिय बाप हूं, आज की मुरली में जिसको तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारा परम धाम में रहने वाला मैं परम प्रिय बाप हूं, बाबा हूं, परंतु फिर भी वो साक्षी है, संपूर्ण साक्षी। साक्षी की भी सर्वोच्च अवस्था पराकाष्ठा, कल्मिनेशन ऑफ साक्षी, द पिनाकल ऑफ डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, सबसे हाईएस्ट स्टेज है उसकी साक्षी की, इसलिए सबसे ज्यादा अचल है वो, इसके लिए कोई चीजें उसको प्रभावित नहीं करती, हलचल में नहीं लाती, और हम हलचल में है उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम साक्षी नहीं है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम प्रेक्षक नहीं, हम दर्शक नहीं, हम अभिनेता बन जाते हैं। जब हम देखें कि यह अभिनय हो रहा है और मैं दर्शक हूं, प्रेषण कर रहा हूं, प्रेक्षक हूं, तो फिर यहां की चीजें मुझे प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे पता ये जो हो रहा है ये सिनेमा उधर हो रहा है, पर हम यहां की सीट छोड़ देते हैं और यहां घुस जाते हैं और बस मैं यही बन जाता हूं जो हूं, व्यक्ति, सेवाधारी, पति, पत्नी, बच्चा, भाई, कुमार, कुमारी, कल कल की मुरली में था रावण कुमार, नया शब्द था ना, शूद्र कुमार या रावण कुमार बन जाते, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते, तदात्म कर लेते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। परंतु भगवान पार्ट जब वो नीचे आता है तब भी वो साक्षी है, ऊपर तो साक्षी है ही है, परंतु जो नीचे आकर देखता है और नीचे आकर बोलते बोलते भी साक्षी है, प्यार करते हुए भी साक्षी है, मुरली सुनाते हुए भी साक्षी है, इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं है उसका, इसके लिए वो सबसे ज्यादा अचल है, सबसे ज्यादा धैर्य उसमें है, सबसे ज्यादा मौन उसमें है, सबसे ज्यादा स्थिरता उसमें है। ऊपर की चारों चीजों का आधार वो साक्षी है, संपूर्ण साक्षी। उसे केवल देखना है, कहीं कुछ करना नहीं, इंटरफियर नहीं करना है, वो कुछ करना ठीक नहीं करना चाहता, आप ही सब कुछ होगा, इस भाव को धारण करना है। साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है, जिसमें व्यक्ति फिर ये नहीं सोचता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पूरा सिस्टम को बदल के रख दूंगा, आमूल परिवर्तन कर दूंगा इस दुनिया में, ये सब विचार विलीन हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो फिर देखता है, वो परम साक्षी भाव है, वो साक्षी की साधना है, वो साक्षी का सागर आ जाता है फिर हमारे अंदर। तो इस गागर में उस साक्षी के सागर को भरना है। तो पांचवा वो साक्षी का सागर है, छठवा वो अनासक्ति का सागर है, अनासक्त है वो, कंप्लीटली डिटैच्ड, कोई जी रहा है कोई मर रहा है, उसको फर्क पड़ता है क्या? साक्षी अर्थात देखना, अनासक्ति का संबंध वैराग से है, साक्षी का संबंध देखने से है, ऑब्जर्वरशिप से है। अनासक्त अर्थात कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, किसी को पकड़ के नहीं रखा है उसने, उसके लिए कुछ नहीं है, खेल हो रहा है। जैसे एक कटोरी है और जिसमें मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाए गए और वो खिलौने टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नए बन रहे हैं, ऐसा खेल चल रहा है सृष्टि पर। उसे क्या, कोई मरता है तो दुख होता है क्या उसको? उसको भी दुख होता है, वाइफ, हस्बैंड, मदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो वीतराग है, अनासक्ति का सागर है, ओशन ऑफ डिटैचमेंट, ओशन ऑफ वैराग, वैराग का सागर ले लो। पर वैराग शब्द भगवान के लिए नहीं कहा जाता, वैराग दिलाने वाला है, इसके लिए अनासक्ति का वो सागर है। वो यादगार है शंकर, और वो उसका यादगार कम, हमारा यादगार ज्यादा है शंकर। यहां पर कभी क्लास भी हुई थी ना, शंकर के 16 स्वरूप, चांद और वो सब चीजें, तो शंकर प्रतीक है वैराग का, वो हमारा यादगार है, उसका कम, क्योंकि लास्ट में लोगों को हम में वो दिखेगा, इसके लिए वो शंकर और शिव को द्वापर से एक कर देंगे, क्योंकि हम में, हम शंकर हैं, हम में शिव दिखेगा उनको, इसके लिए फिर वो याद करके जाएंगे वहां से, यहां से पाठ पढ़ के जाएंगे, यहां का होमवर्क उनको द्वापर में काम आएगा एक करने में। तो अनासक्ति का सागर, और लास्ट सातवां वो रहम और क्षमा का सागर है, शिव सागर रहम का और क्षमा का सागर है। रहम तो करता ही है और साथ साथ क्या कर देता है, क्षमा भी करता है, बड़े से बड़े अपराधी को वो क्षमा कर देगा, दुर्दांत अपराधी, खतरनाक अपराधी को भी वो क्षमा करता है। एक सूफी फकीर ने तो ऐसा लिखा है कि माना मेरे पाप बहुत है और मैं करूंगा, क्योंकि तेरा भी तो गायन है, तू रहम का सागर है, वो कैसे पता चलेगा, करूंगा मैं बहुत पाप, क्योंकि तू भी रहम का सागर है और क्षमा का सागर है, ओशन ऑफ पार्डन, फॉरगिवनेस। तो वो रहम का सागर है। आज की मुरली में बाबा को बच्चे कहते हैं, बाप बाबा कृपा करो, उत्तर क्या दिया मुरली में बाबा ने, देवेंद्र भाई, उत्तर क्या दिया मनोज भाई आज की मुरली में, बच्चे बाप से कहते हैं बाबा कृपा करो, पढ़कर स्वयं पर कृपा करो, उत्तर क्या दिया, पढ़कर खुद पर तुम कृपा करो, मैं कोई कृपा विपा करने नहीं आया हूं यहां, कृपा करने लेनी है तो जाओ उन साधु संत योगियों के पास, वो करेंगे कृपा, मैं कोई कृपा विपा नहीं करता हूं। तो वो रहम का सागर है और वो किसका सागर है, क्षमा का, परंतु वो क्षमा करता तो है, परंतु इसका मतलब ये नहीं, क्या गलती करते रहो, क्षमा मांगते रहो, खत लिखते रहो, भूले करते रहो, क्षमा मांगते रहो, इसको रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण परिवार का, एक मुरली में बाबा ने कहा है, इसको ब्राह्मण परिवार की थ्री पी पता है ना, पाप, पश्चाताप, पार्डन, ये थ्री पी को ब्राह्मण की रीति रसम नहीं बना देना, पाप करना, फिर पश्चाताप करना और फिर क्षमा मांगना, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, और बार बार वही वही करते रहना, रोज रोज गलतियां करना, रोज पाप करना, रोज पश्चाताप करना, रोज बाबा को खत लिखना और फिर बाबा को रोज कहना माफ कर दो, फिर से वही, वो इतना बुद्धू नहीं है, तुम्हारे झांसे में आ जाए। बुद्धिमानों की बुद्धि है। तुम्हारी जालसाजी वहां चलेगी नहीं, वो परम बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की वो बुद्धि है, सब उसको पता है, चतुर सुजान है वो, हर रास को जानने वाला राजू रमजबाज है। तो ऐसा वो है तो उसके सामने ये ठगी चल ना सके। तो ऐसे सप्त सागर है वो, पहला बताया मौन का सागर, और यदि उसको जानना है या उसके समान बनना है या उसका प्यारा बनना है तो वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करे। आज की मुरली में बहुत सुंदर वाक्य है, बाप तुम में प्रवेश नहीं करता है, बाप की याद तुम्हारे दिल में प्रवेश करती है। बाप तुम में प्रवेश नहीं करता है, उन्होंने तो कह दिया वो सर्वव्यापी है, वो तुम में थोड़ी प्रवेश करता है, उसकी याद तुम्हारे दिल में प्रवेश करती है। और याद अग्नि है, भस्म करेगी। आज का ज्ञान अग्नि नहीं है, चलो दो दिन में आ जाएगा कि ज्ञान भी अग्नि है, वो दूसरी बात है। तो उसकी याद तुम्हारे कहां प्रवेश करे, दिल में प्रवेश कर जाए तो वो मौन का सागर है। उसे जानना है, उसे समझना है तो उस मौन को अपने अंदर धारण करना है। जैसे कोई ऊपर से कलश से वो मौन झलका रहा है और वो मौन हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, उस मौन को अपने अंदर समा लेना है, धारण करना है। क्योंकि ज्ञान की गहराई और ज्ञान की डेप्थ केवल मौन से ही समझी जा सकती है। कोई कहे कि ये मुरली मैं लेता हूं और 10 बार पढ़ता हूं, देखता हूं क्या होता है, नहीं जाएगा। मुरली का वास्तविक अर्थ जो समझ में आएगा मौन की अवस्था में समझ में आएगा। क्या कहा है, शब्द जहां खो जाएंगे वहां शब्दों के अर्थ समझ में आएंगे, शब्द जहां विलीन हो जाएंगे वहां शब्दों के अंदर का छिपा हुआ भाव समझ में आएगा। इसके लिए वो मौन का सागर है, तो उस मौन से स्वयं को भरना है। कैसे भरेंगे, सबसे बड़ा मौन पहले मुख का मौन, मन का बाद में आएगा, पहले मुख का। हर एक को बोलना है, सुनने की किसी को भी कोई इच्छा नहीं होती है वास्तव में। जो सुन भी रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी, सुनता कोई भी नहीं है। एक सभा में एक राजनेता भाषण कर रहा था और भाषण जब कर रहा था धीरे धीरे सभी उठ के जाने लगे, पर भाषण तो चालू था, भाषण थोड़ी ना रुकेगा। और जब एक ही बज गया आखिर में, तो नेताजी ने कहा आजकल लोगों को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाषण का, एक तुम ही हो बुद्धिमान जो बैठे हो सुनने के लिए, क्या मैं जान सकता हूं आप क्यों बैठे हो। तो वो कहता है अभी आपके बाद मेरा है नंबर भाषण का, अब तुमको सुनना पड़ेगा, सुनने की रिश्वत दी है, अब तुम्हारी बारी है, मैं सुनाऊंगा। क्योंकि जब मैं बैठा था तो ये थोड़ी ना मैं सुन रहा था, मैं तो अपना रिवाइज कर रहा था ना, मुझे क्या बोलना है, वो बोल रहा है वो अपना बोल रहा है, उसको उससे किसको क्या लेना देना, मैं तो हमारा अपना सोच रहा हूं कि ये उठ जाए और फिर मैं बोलूं। सुनना तो किसी को ही नहीं है, हर एक को बोलना है। बोलना चाहता है हर एक, सुनाना चाहता है, इसमें बड़ा आकर्षण है। पकड़ लेता है ये माइक। तो मौन, वो मौन का सागर, उसके जैसे मौन में उतरना। दूसरा बताया वो स्थिरता का सागर, दूसरा गहराई का सागर। वो गहराई है, हर चीज को गहराई से समझना है, किसी बात को तुरंत स्वीकार नहीं करना, सोचना ये क्यों है, ये कैसा है, क्यों आज बाबा ने कहा मधुबन क्या है, तीर्थ स्थान है, चिंतन करना इसके विषय में। 4 उत्तर दिए इसके मधुबन तीर्थ स्थान के, जो यहां होता है पहले तो तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। क्यों मैं पुण्य आत्मा बन जाता हूं मधुबन में आकर,
चिंतन का विषय है। जो भी समस्या है उससे पार चले जाते हो, क्यों समस्याओं से पार चले जाती है आत्मा मधुबन में आके? तीसरा, तावीज का काम करता है ये, द मैजिकल एमुलेट तिलिस्म। और चौथा, भाग्य। झूले में झूलते हो सुख शांति के यहां आकर। ऐसी ये चार बातें हो जाती है मधुबन में आके, वरदान दिया। तो मधुबन तीर्थ है, तीर्थ क्यों कहा? तीर्थों पर क्या होता है? तीर्थों पर लोग क्यों जाते हैं? तीर्थों की इतनी महिमा क्यों है? चिंतन का विषय है। परंतु चिंतन हम तब कर सकते हैं जब हमें संकल्प हो मन में, ये आज की मुरली का वरदान है और मुझे सोचना है इसके विषय में। टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी जो टाइम है, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बातचीत, गपशप, गॉसिप्स, भोजन, वो सब से इधर हटके इस पे फोकस करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हम सोच सकेंगे, कुछ तो नवीन निकाल सकेंगे। भगवान की कोई दो मुरलियां एक जैसी नहीं है। तो हमारे दो चीजें कही हुई एक जैसी ना हो, एक ही टॉपिक पर अगर 10 बार बोलना हो तो 10 बार अलग अलग होना चाहिए। कुछ भी रिपीट ना हो। अगर ऐसा करना है तो उस गहराई में उतरना पड़ेगा चिंतन की, नहीं तो वही 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 रिपीट। जैसे एक नेता था, 2 भाषण रेडीमेड रखे थे उसने, जहां भी जाओ वो 2 भाषण करो, और 2 एक्स्ट्रा रखे थे अगर कहीं 2 से ज्यादा ही बोलना पड़े तो। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा हर दिन नव चिंतन हो, नया चिंतन हो। जो आज बोला वो गुम हो जाए, अब नया। ये चिंतन का भी एक बंधन है। हमने अगर कुछ चीज पर बोला है 10 दिन पहले और आज का उसी पर बोलो, तो हमारे एक टेंडेंसी होती है कि उसको रिवाइज करें और वही बोला जाए पकड़ के। क्यों नया सोचे? ऑलरेडी रेडीमेड चिंतन तो किया हुआ है ना। वो स्वपुरुषार्थ है, यहां बोलने के लिए हम कह रहे हैं। तो गहराई में जाना। तीसरा, वो स्थिरता का सागर है। जैसा वो स्थिर है, परिस्थितियां खड़ी करके देखना अपने इर्द गिर्द, भूकंप की तरह आ रहा है और हम खड़े हैं। आशीष भाई, इमरजेंसी आ गई, मास कैजुअलिटी, स्थिर रह पाएंगे? 100 पेशेंट्स एक साथ, बस उलट गई, 100 पेशेंट आ गए। ऐसे कई बार हुआ है, या मुंबई में, या बॉम्ब स्पॉट हो गया, पूरा एक साथ इमरजेंसी, 30 पेशेंट एक साथ, इसको देखू कि इसको देखू कि इसको देखू। हाँ, तो ये सब करते हुए ओम शांति। सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरणों का, सागर के अंतस्थल में अवसाद अवाक कणों का। यह जीवन का है सागर, जब जीवन का है सागर, प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। जग जीवन में है सुख दुख, सुख दुख में है जग जीवन, है बंधे बिछोह मिलन दो, देकर चीर स्नेहालिंगन। जीवन की लहर लहर से हंस खेल खेल रे नाविक, जीवन के अंतस्थल में नित बुड़बुड़ रे भाविक। हिंदी के महान कवि सुमित्रानंद पंत की ये लिखी कविता, जिसमें कवि कह रहा है कि जीव दो सागर है, एक तो वो स्थूल और एक जीवन का। वो जो सागर है उसकी लहर लहर में हंसता हुआ हास है, स्वर्ण किरणों में ऊपर जो लहरें हैं, किरणें हैं, वहां पर क्या है? हंसी है। परंतु अंतस्थल में अवसाद है, एक चुप्पी है, एक अवसाद है, एक दुख है। किसका? अवाक कणों का। जो अंदर कण है वो शायद दुखी है। वैसे ही जीवन भी एक सागर है। यह जीवन का है सागर, जग जीवन का है सागर, प्रिय प्रिय विषाद रे इसका, प्रिय प्रिय आह्लाद रे इसका। इस जीवन के सागर में भी कहीं विषाद है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है, कहीं आह्लाद है, पर दोनों ही प्रिय है। जग जीवन में है सुख दुख, सुख दुख में है जग जीवन, है बंधे बिछो मिलन दो। बिछड़ना और मिलना दोनों ही बंधे हुए है, देकर चीर स्नेहालिंगन। जग जीवन की लहर लहर से हंस खेल रे नाविक, इस जीवन की जो लहरें हैं, सुख की या दुख की, दोनों से खेल। जीवन के अंतस्थल में नित बुड़बुड़ रे भाविक, हे भाविक हे नाविक, इस जीवन के सागर को स्वीकार कर। चाहे इसमें सुख आ रहा है, चाहे इसमें दुख आ रहा है, चाहे इसमें मिलना है, चाहे इसमें बिछड़ना है, कुछ भी है, दोनों में ही हास हंसी आह्लाद विषाद, सब में एक भाव छिपा है। तो कवियों ने, योगियों ने, संसार के लोगों ने सागर की बहुत सारी कविताएं लिखी, सागर के बहुत सारे उदाहरण दिए, जीवन को सागर से कंपेयर किया। और जब भगवान धरती पर आते हैं तो सबसे बड़ी तुलना उसने स्वयं की सागर से की कि मैं कौन हूं, सागर हूं। वो बहुत कुछ और भी कह सकता था, वो सब नहीं कहा उसने, सागर से तुलना की अपनी। क्यों? क्योंकि अथा है, क्योंकि बेहद का है, क्योंकि अनंत है, क्योंकि अतल है, उसकी गहराई बहुत ज्यादा है, क्योंकि सागर से क्यों किए। अब तक के जितने शब्द से उनका एक ही अर्थ है सबका, क्योंकि उसमें सब कुछ समा जाता है, क्योंकि सागर से उसने अपनी तुलना क्यों की। ये क्यों नहीं कहा मैं पहाड़ हूं, मैं जंगल हूं। सागर क्या करता है? देता है। सागर क्या करता है? समाता है। सागर क्या करता है? सागर को देखो तो दूसरा और छोर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सागर ही सागर, अनंत सागर समाया हुआ है, और सागर की लहरें उठती रहती है, अलग अलग लहरें, अनंत अनंत लहरें, एक एक मुरली जैसे एक एक लहर है। रोज जो मुरलियां चल रही है उसकी लहरें, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो उसने अपनी तुलना सागर से की। ये एक बहुत विचारणीय बात है कि भगवान अपने आप को सागर क्यों कहता है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था शिव एक अनोखा सागर है, सात बातें थी उसमें, कौन कौन सी? वो मौन का सागर है, वो गहराई का सागर है, वो स्थिरता का सागर है, वो धैर्य का सागर है, वो साक्षी भाव का सागर है, वो अनासक्ति का सागर है, और लास्ट वो रहम का और कृपा का सागर है, क्षमा का सागर है। आज हम और सात बातें देखेंगे उसी शिव सागर की। सबसे पहले वो अभूल का सागर है। अभूल अर्थात जो कभी कोई भूल नहीं करता। यह भी कहा जा सकता है वो भूलता नहीं, निरंतर जागती ज्योत परसों मुरली में था। तुम्हारी ज्योत बुझ जाती है, मेरी नहीं बुझती, मैं तो आता ही हूं ज्योत जगाने के लिए। मेरा काम ही क्या है? ज्ञान सुनाना नहीं। आई हैव नॉट कम टू गिव नॉलेज बट टू अवेकन। मैं जगाने आया हूं। तो सबसे पहला भगवान कौन सा सागर है? अभूल का सागर है। दो चीजें उसमें, वो कभी भूलता नहीं, और दूसरा वो कभी कोई भूल नहीं करता, वो कोई गलती नहीं करता, कोई मिस्टेक नहीं हो जाती उसके हाथों से, मिस्टेक से भी। उसके डिक्शनरी में, शब्दकोश में भूल है ही नहीं। और उसका ये जो रचा हुआ ड्रामा है, उसका रचा है या किसी और का? ड्रामा को किसने रचा? ड्रामा रचा किसने? उसी ने रचा होगा। वो तो कहता है मैंने रचा ही नहीं, रचता तो वही है। तो इस ड्रामा की किसी सीन में कोई भूल नहीं है। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है। हमें लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो सीन बहुत ही खराब है, ये सीन हट जाए ड्रामा से फिर सब ठीक है।
ये सीन ऐसे क्यों है, ये लोग यहां मेरे साथ क्यों आ गए, जो लोग आए हैं वही आएंगे, जो परिस्थिति है वही होनी चाहिए थी, जिस स्थान पर हो वही स्थान सबसे बेस्ट है, ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेंगे ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना है, ना स्थान बदलेगा ना व्यक्ति बदलेगा ना परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि उस स्थान से तुम्हारा हिसाब किताब है। जब तक वो भूमि माटी के कण अपने हिसाब किताब चुप तू नहीं करेंगे, तुमको पकड़ के रहेंगे, चिपक के छोड़ेंगे नहीं तुमको, उस भूमि से भी हिसाब किताब है, उस व्यक्तियों से भी हिसाब किताब है। क्या व्यक्ति छोड़ देंगे, कहां पे भी चले जाओ ढूंढ के आएंगे तुमको, भूत की तरह पीछा करेंगे। जब तक हिसाब चुप तू नहीं करते, जो लिया है उनसे जब तक उसको दे नहीं देते, वो छोड़ेंगे नहीं। तो व्यक्तियों से भी हिसाब किताब है, और तीसरा बताया परिस्थिति, वो आएगी और वो कुछ सिखाने आएगी, और ये जब होगा तब हिलना नहीं। आज की मुरली में सात बातें बताई है बाबा ने, वो नहीं होनी चाहिए, सात शब्द। पहला, मुश्किल क्यों लगता है तुमको? दूसरा, थकावट क्यों है तुमको? तीसरा, उलझन क्यों है तुमको? चौथा, गिर गया, ये गिरना क्यों है? पांचवा, घबराते क्यों हो? छठवा, बुद्धि भटकती क्यों है? और लास्ट, माया क्यों आ गई, माया के वश में क्यों हो गए? ये सात चीजें क्यों हो रही है जबकि तुमको तो पांच चीजें मिली है। कौन सी पांच चीजें मिली है? भगवान साथ है, गले में स्नेह और सहयोग की बाहों का माला है, छत्र है किसका? पालना का, पालना का, और खुशी का झूला है। और पांचवी बात में तीन चार चीजें हैं, भगवान मिलने के बाद भी मुश्किल, सर्वशक्तिवान बनने के बाद भी मुश्किल, सर्वशक्तियां प्राप्त होने के बाद भी, सर्व अधिकार प्राप्त होने के बाद भी मुश्किल, मायाजीत बनने के बाद में भी मुश्किल, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन अगर जीवन में है तो जरूर किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, मनसा वाचा कर्मना, किसी ना किसी मत का, किसी ना किसी सूक्ष्म श्रीमत का, इसलिए तो माइंड में कंफ्यूजन आ गया, ये करूं या वो, इधर जाऊं या उधर जाऊं। क्यों माइंड कंफ्यूज्ड है? क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि और हम उत्तर ढूंढ रहे हैं, कंफ्यूजन कोई ठीक कर दे, कोई नहीं ठीक करेगा कंफ्यूजन। जब तक श्रीमत पर नहीं आ जाती आत्मा, अपने आप वहां सब कुछ, बाबा ने कहा हंसते हंसते नाचते नाचते आराम से बाप के साथ चलो, क्यों छोड़ते हो? क्यों मुश्किल, क्यों मुश्किल, क्यों थकावट, थकान क्यों हो जाती है ज्ञान मार्ग में चलते चलते? जरूर किसी ना किसी श्रीमत का उल्लंघन किया है। क्यों डरते हो? श्रीमत का उल्लंघन किया। क्यों गिरते हो फिर चिल्लाते हो और बाबा को जैसे न्यूज़पेपर में खत लिखते हो, बोलो जैसे न्यूज़पेपर में खबरें आती है दुख और अशांति की, वैसे बाबा को ऐसी खबरें बिल्कुल पसंद नहीं है। पांच प्रकार की खबरें बाबा को पसंद है, वो आज ढूंढना आप कौन सी मुरली में कौन सी खबरें उसको, पांच नहीं छह या सात प्रकार की खबरें, बैड न्यूज और गुड न्यूज। बैड न्यूज उसको पसंद नहीं है तुम्हारी, गुड न्यूज कौन कौन सी है, कौन सी खुशखबरी है जो बाबा के पास पहुंचे तो बाबा को अच्छा लगता है, नहीं तो बाबा को भी अच्छा नहीं लगता है। स्नेही वो सुखदाता और तुम दुखी, उसको ही बुरा लगता है। तो सबसे पहले वो अभूल का सागर है, अर्थात वो कोई भी गलती नहीं करता है। यदि हाँ हम ये भी मान ले कि उसने ड्रामा रचा है, तो उसके रचे हुए ड्रामा में गलती हो सकती है, भूल हो सकती है। वो गलती से अरे मुझे पता ही नहीं था ये एक्टर यहां क्यों रख दिया, इसका पार्ट तो दूसरे सीन में था, सीन थ्री में था, सीन टू में क्यों डाल दिया इसको, ऐसा है। एवरी एक्टर परफेक्ट है जहां पर है, हर सिचुएशन परफेक्ट है यहां पर, क्योंकि हम दुखी है, क्योंकि हम उसमें आइडेंटिफाई तदात्म जोड़ दिया है, हम डिटैच नहीं हो पा रहे उससे। जैसे ही डिटैच होंगे खेल लगेगा एक, और आज की मुरली में बाबा ने कहा जब ये छह सात बातें करते हो तो मिकी माउस दिखते हो बाप को, मिकी माउस कहते छोटा बोटा मोटा हो जाता है, वैसे तुम भी मोटे हो जाते हो छोटे हो जाते हो, तो मिकी माउस नहीं बनना है। मिकी माउस पर जो सवार है गणेश वो बनना, मृषक जिसका वाहन है वो बनना, तो मिकी माउस की तरह छोटा मोटा होते नहीं जाना। तो वो अभूल का सागर है। और दूसरी एक बात इसमें से, तो वो अगर अभूल का सागर है तो मुझे भी क्या बनना है, अभूल, कोई गलती ना हो, कोई ऐसी गलती ना दिन भर करते रहो कि जिसमें पश्चाताप होता रहे। थ्री पीज उस दिन भी बताया था, थ्री पीज अर्थात पाप, पश्चाताप और पार्डन, पार्डन अर्थात माफी। इसको अपना रीति रसम नहीं बना देना ब्राह्मण जीवन का। रोज पाप करो, श्रीमद का उल्लंघन करो, फिर बाबा को खत लिखो लंबे लंबे, माफी मांगो, और उसके बाद में फिर माफी, पश्चाताप करो, माफी मांगो, ये इसको रीति रसम नहीं बना देना है। रोज ही माफी मांग रहे हैं, माफी केवल एक ही बार मांगी जाती है। महानात्मनाए जो एक बार सीख गलती करते वापस रिपीट नहीं करते, तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा है वो। तो वो अभूल का सागर है, हमें भी अभूल बनना है, हमसे भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो, जानबूझकर गलती ना हो, कि हमें पता है वो श्रीमत नहीं है, फिर भी हम अपने आप बरबस उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं, और फिर पश्चाताप, फिर दुख, फिर प्रायश्चित। प्रायश्चित में अभी समय है क्या पश्चाताप करने का? पश्चाताप में टाइम कितना चला जाता है, प्रोसेस कितनी बड़ी है। एकांत में जाओ, चिंतन करो, खत भी लिखो, माफी मांगो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। पहले से प्रैक्टिस होगी तो दोबारा टाइम नहीं लगता है। पर उसका परिणाम भी तो कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो आदत सी हो गई है, क्योंकि वो हैबिट हो गई है। इसके लिए सबसे पहला भगवान अभूल का सागर है, दूसरा वो स्वतंत्रता का सागर है। भगवान क्या है? स्वतंत्रता का, वो किसी पर भी अवलंबित नहीं है, उसे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। वो ये कहता भी है कि मैं इसके शरीर का आधार लेता हूं, पर उसके शरीर में आते हुए भी वो निराधार है, किसी बैसाखी की उसको आवश्यकता नहीं, किसी बैसाखी पर खड़े होकर रेंगने की उसे आवश्यकता नहीं। हिंदी में कहावत है, महालक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी उसके द्वार पर नहीं जाती जो भाग्य की बैसाखी को लेकर रेंगते रहता है, जो परिश्रम करता है, जो कर्मठ है, उसके द्वार पर भाग्य लक्ष्मी जाती है। भाग्य की बैसाखी, भाग्य को बैसाखी बनाकर रेंगने वाले के पास मग लक्ष्मी कभी नहीं जाती। तो वो स्वतंत्र है, संपूर्ण इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी अवलंबित नहीं है, किसी को आधार नहीं बनाया है। हमें भी ये गुण उससे सीखना है, कोई आधार नहीं हमारा, हम निराधार है। जैसे ही किसी को आधार बनाया दुख होगा, क्योंकि जब वो छूटेगा, जब वो आधार हटेगा, तब हमको दुख मिलेगा। याद ही आधार है, याद ही सहारा है, बाप की याद सहारा है, आज की मुरली में है वो किला है, एक याद का किला, ज्वाला का किला बनाओ। तो मनुष्यों को आधार बना लेना दुख को निमंत्रण देना है, मनुष्यों को सहारा बना लेना अपनी ही अर्थी उठाना है। एक राम को छोड़कर किसी और का नाम लेना अपना ही राम नाम सत करना है। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, ये यात्रा अकेले की, अकेले की ओर है। यहां कोई संगी साथी नहीं, जो दिखाई दे रहे हैं वो केवल और केवल खेल है। अकेला, अकेले की ओर जाने का ये मार्ग है। जब जब जिसने जिसने सहारा बनाया, आधार बनाया, सपोर्ट बनाया, वो गिरा है। इसके लिए, और जो स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु स्टैंड्स अलोन, वो व्यक्ति जो अकेले खड़े रहने का सामर्थ्य रखता है इस संसार में, सबसे अधिक शक्तिशाली वो है। जो साथ साथ चलता है, तुम साथ चलो, तुम साथ चलो, कौन साथ चलेगा, कहां तक चलेगा? इस मार्ग में कोई साथी नहीं है। जिसको जिसका हाथ पकड़ा वही हाथ को काट देगा। इसके लिए बी अलोन, इस मार्ग पर अकेले निकलना है। और जैसे ही अकेले निकलने का संकल्प आएगा, सारी मदद ऊपर से आएगी, क्योंकि मनुष्य कोई है नहीं, वो दौड़ के आएगा, वो भाग कर आएगा, वो सब कुछ करेगा फिर हमारे लिए, क्योंकि हम केवल और केवल उसके ऊपर आधारित है। तो जैसे भगवान क्या है, स्वतंत्रता का सागर है, मुझे भी क्या बनना है, मास्टर स्वतंत्रता का सागर, परतंत्र नहीं, कोई स्लेवरी नहीं, किसी भी प्रकार की मानसिक स्लेवरी नहीं, मेंटल स्लेवरी, इमोशनल स्लेवरी, मेरा सुख मेरे पास हो, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, हमारा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, उसने उधर से बटन दबाया खुश तो इधर स्माइल, उधर से बटन दबाया दुख तो इधर से आंसू, आंसू इधर है पर रिमोट उधर है उसके हाथ में, बॉस हो सकता है, साथी हो सकता है, जूनियर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, हमारा रिमोट कंट्रोल छीन लेना उसके जेब से निकालना और अपनी जेब में डाल देना। तो स्वतंत्रता का सागर है दूसरा, तीसरा वो अकर्ता का सागर है, वो कुछ नहीं करता है, सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। सेवाओं में यही भाव रखना है कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कुछ तो करना चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है यहां पे जब ये ओम शांति भवन में ये सब समझाते हैं, ऐसा लगता है हमको भी तो कुछ करना चाहिए, ऐसा हम कुछ तो करें, खाली दिन भर बैठे रहो कुछ तो करना चाहिए ना, सेवा माता है देखो कितनी सेवाएं करती है, दिन रात लगी रहती है। ये भाव रहे कि हमें भी कुछ करना है, ये लोग इतना करते रहते हैं हमको भी तो थोड़ा पीछे थोड़े ना हट रहना है, हम भी तो कुछ करें। कम से कम संडे को हम भी किसी को समझाएं, थोड़ा सा ज्ञान शेयर करें, कुछ तो करें। तो ये भाव जैसे वो सब कुछ करते हुए करता है, वैसे मैं आत्मा भी सब कुछ करते हुए इतना निर्लिप्त, इतना डिटैच्ड उस कर्म से, जैसे वो कर्म किसी और करके चला गया, मुझे उस में वो कर्तापन हट गया है, वो कर्तापन आ जाए, वो योगी की स्थिति है। योगी अपने कर्म से भी डिटैच्ड है, क्योंकि पुण्य कर्म योगी को बांध देंगे, अच्छे कर्म उसको बांधते हैं, पाप कर्म तो वो करता नहीं है, पर पुण्य कर्म जो करेगा वही बंधन बन जाएगा उसके लिए। इसके लिए पुण्य किया और भूल जाओ उसको, क्या किया कुछ खबर नहीं, कुछ याद नहीं। तो जैसे भगवान अकर्ता का सागर है, या उसमें अभिमान है, मैंने देखो 69 कब से 36 से लेकर अब तक इतनी मुरलियां चलाई, उसको कोई अभिमान, इतने लोगों को मैंने जगाया, उसको कोई अभिमान, वो कहता है मुरली में मैं, पर कोई अभिमान है कि उस मैं में अभिमान से परे ले जाने वाला मैं है वो। तो वो अकर्ता का सागर है, हमें भी क्या बनना है, अकर्ता का सागर, कर्म करना और डिटैच हो जाना। कितना फास्ट हम डिटैच होते हैं, कितना फास्ट, वो डिसाइड करेगा योगी की स्टेज को, कितना फास्ट। अभी अभी कोई कर्म किया, वहां से डिटैच हो गए, कहीं और दूसरी सेवा, वहां से डिटैच हो गए योग, वहां से डिटैच हो गए भोजन, वहां से डिटैच हो गए कुछ ज्ञान चिंतन, वहां से डिटैच हो गए नींद, नींद से डिटैच हो गए फिर से योग। फास्ट होना चाहिए सारा। तो अकर्ता का सागर है, नेक्स्ट अभोक्ता का सागर है, वो सब कुछ स्वीकार करते हुए भी कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐसे अभोक्ता बन जाना। भोजन कर रहे किस भाव से, ये नहीं कि ये बहुत टेस्टी है, पर इससे मेरा शरीर स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, इस भाव से, और मुझे इस शरीर को रखना है। क्यों रखना है आशीष भाई, क्योंकि सेवा करनी है, भोग विलास के लिए शरीर मिला नहीं है, तपस्या के लिए शरीर मिला है, इस शरीर में महान तपस्या होनी चाहिए तो ही ये शरीर स्वस्थ रहेगा। जो शरीर को भोग विलास में डुबो वो बीमार होगा, रोगी होगा, रोग का एक कारण ही भोग है, और जितना जितना उसको तपाओगे अपने आप स्वास्थ्य दौड़ कर आएगा वापस। तो वो अभोक्ता है, तो मुझे भी क्या बनना है, सब कुछ स्वीकार करते हुए भी जैसे कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद वो असोचता है का सागर है, कि भगवान रेडी करके आता है मुझे भाषण देने, नीचे जाना है, कौन सा कागज लेके जाऊं, वो मुझे ये भाषण देना है, वो भाषण देना है, ये मुरली करनी है, ये मुरली सुनानी है, सोचता है क्या वो, कुछ नहीं, असोच है। और द ग्रेटेस्ट स्पीच जो दिया जाता है असोच अवस्था में एंट्री होने के बाद ही दिया जाता है, कोई वहां चिंतन नहीं मिलने से, उस निर्विचार अवस्था में जाना, तो वो असोचता का सागर है, तो मुझे भी क्या बनना है, असोचता का सागर। नेक्स्ट वो निरंकारिता का सागर है। कोई अहंकार है क्या उसमें? अहंकार जरा भी नहीं है, किसी भी बात का अहंकार नहीं है, उसके मैं में भी कोई अहंकार नहीं है। जहां वाणी में अहंकार है, मैं ये हूं, मैं पुराना हूं, मैं यहां हूं, मैं ये करता हूं, मैंने ऐसा किया, ये सारी परिभाषा ही उस समर्पण के विरुद्ध है। समर्पण अर्थात मैं का गिर जाना, ये फाइनल डेफिनेशन है। समर्पण अर्थात मैं जो है वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, आए ही नहीं कहीं बोल में, वाणी में, स्पीच में, वो आ रहा है अर्थात जीरो लेवल पर है, एंटी समर्पण है, क्योंकि आय का गिर जाना ही समर्पण है। तो निरंकारिता जैसा वो निरंकारिता का सागर है, हमें भी क्या बनना है, निरंकारिता। और लास्ट वो निर्वैर का सागर है, उसका किसी से कोई शत्रुभाव नहीं है। और यदि हम अपने मन को चेक करें तो हमको पता चलेगा सूक्ष्म में कितने सारे शत्रु अंदर बैठे हैं, कितने सारे लोगों को हमने शत्रु मान बैठा है कि ये ठीक नहीं है, ये हमारी ग्लानी करते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं, ये हमारे बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, हम तो कितना अच्छे हैं पर फिर भी ऐसा बोलते हैं, और ये लोग अच्छे नहीं है, शत्रु बना के बैठे हैं, सूक्ष्म अदृश्य शत्रु अंदर बैठे हैं। जब तक वो सारे हमको मित्र ना दिखाई दे, जब तक हम विश्वामित्र ना बनेंगे, वो राम हमारे साथ नहीं आएगा। दिखाया ना रामायण में विश्वामित्र आते हैं, दशरथ को कहते हैं मुझे राम दे दो, दशरथ कहता है मैं नहीं दूंगा, राम कहता है मुझे जाना है, दशरथ कहता है मैं नहीं दूंगा, मेरे दो राम लक्ष्मण मुझे बहुत प्रिय है, पर राम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो विश्वामित्र है। हम जाएंगे तो दशरथ कहेगा लेके जाओ, राम कहेगा मैं नहीं जाता हूं, क्योंकि राम किसके साथ जाएंगे, जो सकल विश्व का मित्र है उसी के साथ जाता है। तो निर्वैर का सागर। तो ये फिर से सात बातें थी। भगवान सागर है, किसका सागर है? अभूल का। मुझे भी क्या बनना है? अभूल। अब कोई जानबूझकर कोई गलती नहीं करनी है, पता है श्रीमत है और फिर तोड़ना नहीं है उसको। दूसरा, वो स्वतंत्र है, वैसे ही उसके समान स्वतंत्र हो जाना, कोई बॉन्डेज नहीं। वो बोलता है मैं ड्रामा के बंधन में हूं, मैं इसका आधार लेता, पर वो सब करते हुए भी वो स्वतंत्र है। उसको बुरा लगता, अभी ये बताओ कि नीचे 20,000 लोग आ गए और बाबा आने वाले, और पता चलता है टाइम पर वो नहीं आ रहा है, तो उसको बुरा लगता है क्या? बोलो, नीचे 20,000 लोग आ गए और वो टाइम पे आता ही नहीं है, फिर वो डिटैच है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, वो डिटैचमेंट ही उसकी उसका स्वभाव है। और वो करते हुए भी ऐसा भी नहीं कि वो कुछ सोच के कर रहा है, उसका स्वभाव ही डिटैचमेंट है। तो वो स्वतंत्रता का सागर है, वो असोचता का सागर है, अभोक्ता का सागर है, अकर्ता का सागर है, वो निरंकारिता का सागर है और निर्वैर का सागर है। तो उसके जो गुण है, एक मुरली में बाबा ने कहा है, बाप के टाइटल, बाप के नाम बच्चों के टाइटल, बाप के जो नाम है वो बच्चों के टाइटल है, वो जो जो है वो हम है, हम उससे भिन्न नहीं है। और जैसे जैसे हम उसके पास, उसके समीप जाते जाएंगे, हम भी उसके समान बनते जाएंगे। माय फादर एंड आई आर वन, ये अवस्था आएगी धर्मों की। इसलिए आत्मा सु परमात्मा भक्ति मार्ग में कहा, परंतु उसका राज है क्योंकि उसके जैसा हम बनते जाते हैं। काम क्रोध निमले ठाई चे झाला स्वयं व पांडुरंग, स्वयं ही जैसे वो